Rav, io però c'è un tram su te sam di Sri Ram su te si marazzara, di non fare un obarne go, frate, la gozzare a te, si jan per me gua, Rav.
Parakrita nagadvandham param brahmanara krati, saundarya sar sarvasvamo vande nandatmajam ha, prapanna parijataya potravetri gapanai, jnana mudraya krishnaya, गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशीविभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण
पूर्णाचार्य ने मेरे को विशेषता से विद्या पढ़ाया है। अपना बेटा अश्वत्थामा उसको ब्रह्मास्त्र छोड़ने की कला तो बताई, परंतु उसका उपसंहार करने की कला खास बेटे को नहीं बताई, वो मेरे को बताई है। तो मेरे पर गुरु जी का स्नेह बहुत है, पूजनीय आदरणीय है। और पितामह भीष्म हमारा पालन करने वाले, रक्षा करने वाले, सब राज्य का संबंध प्रबंध करने वाले भीष्म जी महाराज थे। मैं बचपन में भीष्म जी गोद में चला जाता, भीष्म जी की वर्दी बताई, उनका साफ सफेद कपड़े होते थे, राढ़ी भी सफेद, केश भी सफेद, ऐसे रथ भी कहते चांदी के पहाड़ की तरह बड़ा सफेद था। तो उन गोदी में मैं चला जाता, खेलता कूदता ऐसे मेरे कपड़ों को लेकर के यूं को दिन जा बैठता, एक प्यार से दिलार करते, प्यार करते। और मैं कहता हूँ पिताजी पिताजी, तो प्यार से कहते बेटा तेरे पिता का भी मैं पिता हूँ, तेरा ही पिता नहीं हूँ, ऐसे प्यार से दिन गोदी में फला हूँ। कसम भीष्म संख्य द्रोण से प्रदूषण करना भगवान, ऐसे भीष्म जी महाराज को और द्रोणाचार्य को मैं कैसे मारू, इस भी प्रत्योत्स्यामी पूजा राबना। इस श्लोक में दो संबोधन दिए, कथम भीष्म संख्ये द्रोणं से मधुसूदनं, इसुभि प्रतियोत्स्यामि पूजा रो हरिसूदनं। तो मधुसूदन और हरिसूदन कहने का तात्पर्य, मधु नाम दैत्य था उसको आपने मारा, तो इनको मैं कैसे मारूं, इसको भी बाणों से। तो यीशु भी कहने का तात्पर्य क्या है कि गुरुजी ने उनको रे तू भी नहीं कहना चाहिए, ऐसा तिरस्कार का रे तू ऐसा शब्द भी नहीं करते। गुरु हम कृत्य तम कृत्य वृत्तान निर्वृत्य वास श्मशान जाए थे वृक्ष कंक गृोप से भी था। गुरुजनों को जो रे कहता है तू कहता है, तिरस्कार कर देता है, तो वो मर करके गीत होता है और स्मशान का गीत होता है, जहां मुर्दों का ही धुआं लगे ऐसे गीत होता है। तो ऐसे गुरुजनों को मैं कैसे मारूं, ऐसे पूजनीय है। संसार में देखा जाए तो बड़े आदरणीय भीष्म पितामह आज अपने बड़ेरों का आदर करते हैं, पिंड देते हैं, पानी देते हैं, तो दुनिया के सब लोग भीष्म महाराज को पानी दे पिंड देते हैं। उन्होंने ब्याह नहीं किया, बस वाले पानी और पिंड दिया करते हैं, तो सब लोग भीष्म जी के नाम से पिंड और पानी देते हैं। पितामह भीष्म दादाजी कहलाते हैं, दादाजी ऐसे पूजनीय आदरणीय और मेरा स्नेह करके मेरा पालन करने वाले, उनको ईश्वरी बाणों से, बाणी से भी दे तू नहीं करना चाहिए, उसको बाणों से माने कैसे प्रसिद्ध करो। प्रतिरोध स्वामी का तात्पर्य वे ताड़ना कर सकते हैं, मारपीट भी कर सकते हैं, शिक्षा भी दे सकते हैं, शासन भी कर सकते हैं, क्या गुरु है दादा है, पर प्रतियोगी प्रतिदिन युद्ध करो, वे भी मारे मैं भी सामने मारू, जैसे प्रतिदिन कैसे युद्ध करो। फिर कहता है गुरु न हत्वा हिमान भावान श्रेयो भोग तुम भैक्षिम अभी ये लोग हत्वार्थ कामांस गुरु नहीं वह भुंजी भोगान प्रतिदान। कहते गुरु न हत्वा है, ये बात अर्जुन क्यों कह रहा है, ये दूजा और तीजा दो श्लोक है दूसरे अध्याय की, उसमें अर्जुन ने जो पहले की महाराज में कुटुंबियों को मारना नहीं चाहता, तब ऐसे अर्जुन के प्रति कुतस्वाकस्मरम, ये कायरता तुम्हारी कहां से आ गई, कैसे आ गई, ये अनाज जो तुम अश्वर की हम आकृति करम, इसका श्रेष्ठ पुरुष आचरण नहीं करते, इससे कोई स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती और कीर्ति का नाश करने वाली चीज है, ऐसी कायरता तुम्हारे कहां से आ गई, कायरता तो कायरता की निंदा करते भगवान, कुतस्ता कस मिलम, एक आलस्य एक कालापना कहां से आया, और आज वाले क्षुद्रम हृदय और बल्लम त्योष्ट तुच्छ हृदय की दुर्बलता है, इसको छोड़कर खड़ा हो जा युद्ध कर। ऐसे भगवान ने तीसरे श्लोक में आज्ञा दे दी, तो जैसे अर्जुन ने उसे भगवान कहते कुतस्ता कस मल वेदम, ऐसे अर्जुन कहते हैं कथम भीष्म हम सुनखे कि महाराज कैसे मारूं उनको मैं, प्रारंभ बांध चला करके कैसे युद्ध करूं, ऐसी बात कही। कहते ही अर्जुन के मन में बात आती है, क्या इस बात को भगवान नहीं जानते हैं, ये भी जानते हैं, तो दूसरी आज्ञा देते हैं। तो अर्जुन कहता है महाराज दोनों पक्ष सामने रखो, गुरुजनों को मारना न मारना, गुण अहत्वा हे महानुभावान, ये महानुभाव गुरुजन है उनको अहत्व मारू नहीं, गुण अहत्वा हे महानुभावान न मार करके क्या करेंगे, श्रेयो भोग तुम भैक्षम अपि ये लोके, क्षत्रियों के लिए भीख मांगना दोष है, नीचा बताया है, तो भिक्षा मांग करके अपना निर्वाह करना मैं श्रेष्ठ समझता हूं, परंतु गुरुजनों को मारना श्रेष्ठ नहीं समझता हूं, श्रेय का श्रेयो भोग तुम भैक्ष्यम अभी ये लोग भैक्ष्यम भोग तुम अभी श्रेय, भिक्षाकार में कहना भी शेष मानता हूं, गुरुजनों को न मारने से तात्पर्य यह निकला कि दुर्योधन कभी मानने वाला है नहीं, सब तरह से उनको कह दिया कि संधि कर लो, पहले ब्राह्मण को भेजा संधि का प्रस्ताव लेकर, दुर्योधन ने नहीं स्वीकार किया, फिर कृष्ण भगवान स्वयं गए स्वयं जाकर कहते हैं कि तुम संधि कर लो, लड़ाई मत करो। एक विचित्र बात है, जब भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर जाने लगे तो युधिष्ठिर से पूछा तो युधिष्ठिर का संधि हो जाए अच्छी बात। अर्जुन नकुल भीमसेन नकुल सहदेव इन्होंने कह दिया, भीमसेन ने भी एक बार कह दिया कि संधि हो जाए तो अच्छी बात है। तो भगवान ने कहा भीमसेन तुम भी संधि का प्रस्ताव? नहीं 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 महाराज, मेरा संधि का प्रस्ताव नहीं है, मैं नहीं सुन रहा था। इतना जोर से बोला भीमसेन, बड़ी संघार नाटक में आता है, मत्ता में कौरव सतम समरे न यावत दुस्साहस नीरंग नोरस्तम संतूर्ण या में गदया न सुयोधनोरुम संधि करो तो भवतांग निपति पणेरो। द्रौपदी के अचीर खेचा गया, सभा के बीच में अपमानित की गई द्रौपदी, केस खींचे गए। आपको आश्चर्य होगा उस समय भी सभा, आजकल सभा भी ऐसा नहीं सह सकती, उस सभा में एक वस्त्र को द्रौपदी स्त्री धर्म में एक वस्त्र एक साड़ी पहनने के लिए गिरा दी गई, घसीटी गई जैसे मरे हुए कुत्ते को, जैसे जैसे इतना अपमान हुआ। भीमसेन को उस समय में गुस्सा आया है, युधिष्ठिर महाराज तो महाराज क्या बताऊं, क्षमा की मूर्ति थे। भीमसेन गुस्सा आया, हाथ मुसलने लगा, ऐसे दांत मुसलने लगा। युधिष्ठिर महाराज ने चुप हो जाए, सुनते हैं कि रोम कुंभों से धुआं चिंगारियां निकलने लगी, इतना क्रोध है। अब इनकी सबका जान ले लू, सबको नष्ट कर लू। अभी बल था, बात तो ठीक ही थी, इतने बल को रोक देना महाराज ये कोई बड़ी भारी साहस की बात है। ऐसा सामने अत्याचार देख करके युधिष्ठिर महाराज ने ऐसा कह दिया, चुप हो गया। नहीं तो रुकना बड़ा मुश्किल है, इतना पास में बल हो रहे अत्याचार सामने हो। और बोल गया, बड़ा कड़वा बोल गया युधिष्ठिर महाराज के सामने भी, पैसा खेलते हाथ क्यों नहीं जल गया आपने, द्रौपदी को लगा दिया। अर्जुन ने क्या कह रहे हो, क्या बोल रहे हो, कितना जला थोड़ी नहीं है मैंने। वो कैसा है, संधि अगर करना हो तो तीन बात है मेरी शर्त है। ये दुर्योधन आदि 100 भाई है, 100 के 100 को मैं ही मारूंगा अपने हाथ से। जब तक इन 100 को मैं न मार दूं, ऐसे कोई दूसरा मार दे तो उसको मार करके मैं तो 100 संख्या पूरी करूंगा। वो हमारी सेना का ही होता है, 100 करोड़ मार। और दुशासन ने जो चीर खेचा है उसकी छाती चीर करके उसका खून न पी जाऊं जब तक। और दुर्योधन ने जांग दिखाई है कि तुम जीतेगी मेरी बाई जांग पर, यहां बैठ, ऐसे द्रौपदी को कहा है, गदा से उसकी जांग चूर्ण न कर दूं तो सिर्फ संधि करो तो भोतांग ने भी तुम्हारा राजा युधिष्ठिर मैं संधि। ये तीन बात किए मैं नहीं करूंगा, ये भी तीन बात करूंगा पीछे देखा जाएगा। तो उस समय भी एक बार बात करी भगवान ने चेताया। इसके बाद द्रौपदी से पूछा कि मैं संधि का प्रस्ताव लेकर जाता हूं। द्रौपदी के कृष्ण भगवान की स्नेह बहुत था, द्रौपदी के भीतर में भक्ति थी बहुत विचित्र, और भगवान पर बड़ा भारी घनिष्ठ विश्वास था। जब कभी काम पड़ा है द्रौपदी ने पुकारा, चट आ गए भगवान, वहीं आ गए। तीर खर्चा गया उस समय में गोविंद द्वारका वासन कृष्ण गोपी जन प्रिय गोपी जनों के प्यारे द्वारका में रहने वाले भगवान कौन वारणों मग्ना मांग किन जाना शिकेश हुआ इस कौरव रूपी समुद्र में मैं डूब रही हूँ क्या आप नहीं जानते ऐसे पुकारिए तो भगवान आए पर इतनी पहली दुर्दशा करके आए भगवान ने कहा तुमने द्वारका वासन कह दिया ना तो द्वारका जाकर आना पड़ा मेरे को देरी लगी अगर यही दई तो जैसे गोपिकाओं ने कही दई तो दृश्यताम दीक्षुता वका तो दशा सुबस्वांग चिन्ह से एक कृष्ण दिख जाओ आप दिख जाओ आ जाओ नहीं कहा है दई तो दृश्यताम दिख जाओ तो ताशाम आवी भूत से गोपिकाओं पीछे ही पलट हो गए बस ताशाम आवी भूत सौरी स्मयमान मुखाम मुझे पीता मदर सगी साक्षात मन मत मन मसा बीच में प्रकट हो गए गोपी बाबू बीच में तो इसे देरी से आए बड़ा विश्वास बड़ा खरा एक प्रसंग आया सुभद्रा भगवान की खास अपनी बहन माँ जाई कोई बात प्रसंग चला तो भगवान ने कहा कि जैसे सुभद्रा मेरी बहन है क्या द्रौपदी बहन नहीं है क्या उसने द्रौपदी मेरी कम है क्या बड़ा स्नेह था बहुत स्नेह दुर्वासा आए उस समय जहां कहीं आफत आई द्रौपदी ने पुकारा एक बार रहते थे विचार किया कि यज्ञ करें पर किसने सलाह करें भगवान से सलाह करते और किसने भी सलाह पूछे वो तो आए नहीं कि मैं तो आ गया बोलो चट्टा कि ऐसा विश्वास आई थी भगवान की कृपा से उस द्रौपदी से पूछते हैं कि तुम क्या कहती है संधि का प्रस्ताव लेकर जाता हूँ महाराज ऐसी करड़ी बोली है कि तुम्हारे को शर्म नहीं आती है उन दुष्टों से संधि करते हो आप कोई नहीं करेंगे तो मेरे बूढ़े पिताजी करेंगे मेरे भाई करेंगे युद्ध करेंगे आप डरते हो क्या डरने सब तो नहीं कहा वहां परंतु उसे संधि करते हो जाओ भले कुरु राज में धारी दूत प्रवेश संधि के दूत बन करके आप जाते हो जाओ बन पैवा भोजन जाइयो केश हो द्रौपदी केश ये केश मेरे खुले ये केश याद रखना जब दुशासन ने केशों पर हाथ खेचा केश उसे द्रौपदी ने कह दिया कि जब तक दुशासन के खून से मेरे केश न भीग जाए तब तक मैं बैन नहीं बांधूंगी ये खुले ही रहेंगे तो भगवान को बताया आपको याद नहीं है केश भूल मत जाना ये संधि का प्रस्ताव देते रहे शर्माने चाहिए आपको उन दुष्टों के साथ में मेरी कितनी दुर्दशा करी उनके साथ संधि करने के लिए जा रहे हैं रो पड़िए रोने लगी दो भगवान ने कहा तुम रो मत तू एक ही रोती है अभी तो और हजारों ही क्षत्रियों की स्त्रियों रोएगी और युद्ध होगा और ये मरेंगे परंतु पांडवों पर दोष न रह जाए संधि का प्रस्ताव लेकर गया है ब्राह्मण मैं फिर जाता हूं वो मानेगा नहीं संधि नहीं होगी बड़े जोर से बोल के भविष्य की बात भगवान जल्दी कहते नहीं है पर द्रौपदी के सामने कह दिया हिमालय चलायमान हो सकता है मेदनी सतथा फले इस पृथ्वी के 100 टुकड़े हो सकते हैं परंतु जो साधन है जी नहीं सकते जी मरेंगे सब क्यों कर रहा थी बात मैं जा रहा हूं अभी तो द्रौपदी के ऊपर बहुत स्नेह था भगवान का बड़ा प्यार था मेरी शुरू से आए उसे कम नहीं है मेरी ये भी मेरी बहन ही है बड़ी भक्ति थी बड़ी विश्वास और थी उत्तरा की वो अभी प्रसंग नहीं है द्रौपदी के पुत्र की स्त्री उत्तरा बड़ी विलक्षण उत्तरा छोटी लड़की महाराज पर भाव द्रौपदी से कम नहीं है उसका भगवान के प्रति अर्जुन तो खास मित्र थे ही, इस वास्ते भगवान इस तरह बताए हैं, कोई पक्षपात नहीं है। संधि का प्रस्ताव लेकर गए, जा रहे थे रथ में, उसमें ऋषि मुनि जंगलों में रहने वाले वे भी जा रहे थे। भगवान रथ से उतरे, सबको प्रणाम किया कि आप कहाँ जा रहे हैं, कि जहाँ आप जा रहे हो संधि का प्रस्ताव ले जा रहे हो कि वहां राजनीति की बातें होगी, उसमें कोई धर्म की और मुक्ति की चर्चा थोड़ी होगी, कि महाराज की कुछ भी चर्चा करके कहने वाले कौन है, आप कहने वाले हम सुनेंगे, वो बेकार सुनने को जा रहे हो। क्या एक भक्ति उनकी भी, भगवान गए संधि का प्रस्ताव लेकर के। दुर्योधन ने प्रस्ताव रखा कि वो कृष्ण आ रहे हैं, उनका सत्कार करो, विशेषता से आदर करो। दुशासन का महल सबसे बढ़िया था, विशेष उसमें भोग सामग्री थी, श्रृंगार था बहुत सुंदर। दुशासन का महल उनको उतरने के लिए दियो, कृष्ण भगवान वहां ठहरे और सब तरह से तैयारी करो, भेंट पूजा करो, ऐसा करो। ऐसे विषय का कहा तुम्हारी स्वीकार नहीं करेंगे, कितनी भेड़ को स्वीकार नहीं करेंगे, कितना ही आदर कर दो। कहा कि महाराज हमारे फिर पार्थ चली तो भगवान जाने लगे विदुर जी के घर पर, तो कहा कि मेरे यहाँ भोजन यहीं करो, आप हमारे आए हो, हमारे संबंधी हो, आप कुटुंबी हो, सगे संबंधी हो, तुम्हारे यहाँ भोजन करो, भोजन नहीं करूंगा, भोजन तेरे नहीं करूंगा, और जितना आदर सत्कार मैं आदर सत्कार नहीं करूंगा, मैं संधि का प्रस्ताव लेकर पांडवों की तरफ से आया हूं, तेरी कोई चीज ले लू तो घूस में समझ जाएगी, कोई चीज नहीं करूंगा मैं, तेरी कोई चीज नहीं लूंगा, भोजन तो करो। कहना दो तरह का होता है, एक तो अत्यंत स्नेह हो तो वहां भोजन करना पड़ता है, भूख न हो तो कुछ लेना ही पड़ता है प्रेम के कारण से, अथवा भूखा मरता हो तो प्राण रक्षा के लिए लेना ही पड़ता है। तो प्रीति भोज जानी चाहिए, आपद भोज जाने वापस, न तो संप्रिय से राजन नहीं वास पवित गता भयम, न तो तुम्हारे प्रेम है और न मेरे भूखा मरता हूं, नहीं करूंगा। भोजन विभुत कही है दादा, प्रीति पड़ेगा विभुत पड़ेगा, प्रीता प्रीति तुम्हारे विभुत हमारे, यही उल्टी रीता, उल्टी रीत क्यों करते, स्वास्थ्य भगवान लिया नहीं, कोई आदर स्वीकार किया नहीं, मेरी बात मानो तो फिर देखा जाएगा, पहले मैं स्वीकार नहीं करता। फिर भगवान समझाने लगे तो खड़े होकर व्याख्यान देने लगे, संधि कर लेने से ठीक है, नहीं तो दुर्दशा होगी, वो कुपित होकर अर्जुन सामने चलेगा तो कौन ऐसा मई का लाल सामने टिक सकेगा, ये इसमें तुम्हारे हानि है, संधि करने में लाभ है। विशेष सब समझाया पर दुर्योधन मान लेगा नहीं। जब व्याख्यान दे रहे थे उस समय में दुर्योधन दुशासन और कर्ण और शकुनी ये चार एकांत बैठ सलाह कर रहे थे कि अपने कब्जे में आया हुआ है, अभी इस कृष्ण को बांध करके कैद में डाल दो, सांकला से बांध करके पांडव आप ही शांत हो जाएंगे, सबका ठीक हो जाएगा, ऐसी सलाह कर रहे थे। साथियों को पता लग गया भगवान की सेना का सत्य, वो सभापति था, उसने आकर भगवान से कहा महाराज आप तो दे रहे हो व्याख्यान, उधर आपके लिए कैद खाना तैयार, सांकड़ तैयार हो रही है बांधने के लिए। भगवान ऐसे बात के लिए भगवान ने कहा वो कौन है मेरे को बांधने वाले, उन्होंने सुना नहीं ये क्या बात है, हम तो यहां सलाह करते वहां पता लग गया उनको, इतने दुर्योधन दूसरा सुनाए कौन है मेरे को बांधने वाले, देख मैं क्या हूँ, ऐसा करके बिराट रूप दिखाया बोला है, मूर्छित होकर गिर गए। भीष्म जी है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, स्तुति करने के लिए प्रातः धन्य 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 से ऐसा विराट सब सृष्टि छोटे 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 अंगों तमाम सब शरीर में सब संशय बंद बिदुर जी के साथी के हाथ पकड़ के भगवान चल दिए, बिदुर जी के घर में चले गए। बहुत स्नेह था, भगवान की बात मानते थे। अब पीछे आ जाते हैं अवसर पर, तो विष्णु के पास ही वो अर्जुन कहता है, महाराज मेरे को युद्ध में क्यों लगाते हो आप? भिक्षा मांग रखा लेने अपने भीष्म और द्रोण को मैं मारना नहीं चाहता, और भीष्म और द्रोण के मारे बिना ये दुर्योधन युद्ध करता नहीं, ये तो इनको सामने रखकर युद्ध करेगा, और दुर्योधन को अगर मारना है तो इनको पहले मारना पड़ेगा, ये ऐसी बात है, परिस्थिति ये है। इस वास्ते महाराज मैं नहीं मारना चाहता। भगवान ने कह दिया छुप से मुझे दूर कैसा उचित खड़ा हो जा। अर्जुन कहता है महाराज सुन लो मेरी बात, इन गुरुजनों के मरने से जो मेरे शोक होगा दुख होगा, आप समझते हैं कि ये राज्य मिलने से राजी हो जाएगा? ये राज्य क्या है यार, सुनाना भी आधिपत्य में देवताओं को आधिपत्य मिल जाए तो भी मैं ये नष्ट करना नहीं चाहता, नहीं चाहता। तो गुरु ने अहत्व तो ये होगा, हत्वा से काम मार लेंगे तो महाराज ये राज्य तो मिलेगा, वो भी नष्ट व्यस्त है, आपस में लड़ाई होने के बाद राज्य मिलता है, वो राज्य तहस नहस हो जाता है पहले ही लड़ाई में, और यह संपत्ति रहेगी चीज क्या रहेगी? हार है तो ही हार है, जीत तो भी हार है, और के फिर क्या भोगाने भूंजे भोग की कैसे रुझे प्रतिदान गुरुजनों के खून से सच लथ पथ, ऐसे भोग ही तो भोगूंगा, और वो यही यहाँ यहाँ परलोक में क्या दशा होगी, मैं युद्ध करना नहीं चाहता। ये कह मेरे शोक दूर नहीं होगा। इसके बाद भी अर्जुन के मन में रही कि भगवान का तो बोझिए युद्ध करो, तो अर्जुन ने साफ बात से बता दी और क्या करके न यो से गोविंद मुक्त हुआ तो उसने भगूंगा, महाराज मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसे कर चुप हो गया। शंका होती है कि अर्जुन पहले शरणागत हुए फिर उपदेश आरंभ हुआ, अंत में माम एकम शरणम रज क्या कहते हैं, तो अर्जुन ने कह दिया कि मैं योद से युद्ध नहीं करूंगा। इस वास्ते भगवान फिर कहते मैं माम एकम शरणम रज। एक और विलक्षण बात इससे निकलती है, जब भगवान से कह दिया कि हे नाथ मैं आपके शरण हूं, इसके बाद में युद्ध न करूंगा कहने पर भी भगवान हंसे, तुम वास ऋषि ये सब प्रहसन में हो, हंसते हुए बोले, हंसे क्यों? कहते क्या बचपन की बात करता है, मेरे को शिक्षा दे दिए शरण हूं युद्ध नहीं करूंगा, तो मेरे हाथ चलाना है कोई काम कराना है युद्ध नहीं करेगा, पूछ रहा है। इसमें एक विलक्षण भाव आता है सज्जनों को ध्यान देने का है, भाई बहन ख्याल करे, एक बार कह दिया कि हे नाथ मैं आपके शरण हूं, फिर भगवान उसको छोड़ते नहीं है, कह दिया था नहीं शरण हूं सारी बात तो हम प्रपन्न हो, तो नहीं उससे कहने पर भी नहीं बोले। अंत में 18:59 श्लोक में कहते हैं शरण होने पर न योद से कहा ये भगवान के बुरी खटक की बात, वहां कहते यदि अहंकार आश्रित्य तो कहते मैं आपके शरण हूं, मेरे शरण में शरण अहंकार कह दू, यदि अहंकार आश्रित्य न योद से इति बनने से न योद से वो कहो पद खटका न योद से इति बनने से ऐसा मानता है युद्ध नहीं करूंगा, मिथ्या है व्यवसाय से ये तेरा निश्चय है, झूठा है, असत्य है, प्रकृति स्वामी नियोग से थी छात्र प्रकृति मैं जानता हूं तेरे को पता नहीं है, कर तुमने जिसे मोहात मोह है, मूर्ता है, मूर्ता बिना समझे कि तू बात कर रहा है। जो धोगा उस समय कूद पड़ेगा तू। शौर्य तेजो धृतिराक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावस्थ क्षात्र कर्म स्वभावजम, दानमीश्वर भावस्थ क्षात्र कर्म स्वभावजम, क्षत्रियों का स्वभाव धर्म है, स्वतः जब युद्ध होगा तेरे से रह जाएगा नहीं, ये प्रतिज्ञा झूठी हो जाएगी। और तू युद्ध करेगा अहंकार नष्ट हो सी, मेरी बात को नहीं सुनेगा, विलीन शशि नष्ट हो जाएगा, वही युद्ध तेरी मर्जी से करा नष्ट हो जाएगा, वही मेरे करे करे उद्धार हो जाएगा, तेरी चिंता की बात नहीं है। कितना फर्क है युद्ध एक ही पर भगवान की आज्ञा है। सज्जनो भगवान की संतों की आज्ञा है। दो बात बताई है गई रामायण में और आसनों से भी देखा है। रामायण में बहुत विलक्षण रीति से प्रसंग आया है, अभी दूसरी बात कहने के मन में है, फिर मौका लगे बताएंगे। ये दो की आज्ञा सबको पालन करनी पड़ती है, विचित्र बात। तो भगवान आज्ञा देते हैं युद्ध करने की, वो तो तू सोच मत कर, सब पापों से मैं मुक्त करूंगा, भगवान ठेका लेते हैं। और अहंकारात न सोचसी विनंक्षसी, तो सर्वधनवान परिचित माम एकम शरणम भज। तो न सोचसी विनक्षसी, अर्जुन बोला नहीं, यदि अहंकार मास्टर कहा तो बोला नहीं। फिर कहा कि ईश्वर है, इस संसार में समझेंगे परिपूर्ण परमात्मा से संसार प्राप्त है। ब्रह्म यं सर्वभूतानि यं सर्वगुण ईश्वर सर्वभूतानां हृदये संतिष्ठति, ब्रह्म यं सर्वभूतानि यं सर्वगुणानि माया उसे ब्रह्म कहते हैं, वो मालिक है ईश्वर, सब में व्यापक परिपूर्ण है, तमेव शरणं गच्छ उसकी शरण, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं चाभिः शाश्वतम्, उस परमात्मा की शरण चला जा। तो आशंका होती है उस परमात्मा की शरण चला जा जो सर्वव्यापक है। ये क्यों कहा? अभी फटकार दिया, धमका दिया, फिर भी युद्ध स्वीकार नहीं करता है तो भगवान कहते मेरी शरणागति पीछे बताई अपने, उस परमात्मा की शरण चल रहा है। तत्प्रसादात परम शांति में सास, परम शांति शाश्वत पद मिल जाएगा उसे समझा। इतने पर भी अर्जुन बोला नहीं। तो भगवान के इतने ज्ञान मार्ग क्या था उनको याद गुड़िए था, गुप्त से गुप्त ज्ञान तेरे को मैंने कह दिया, विमर्श एक अशेष लेना, मेरी बात का विचार कर लेना, सोच लेना, समझ लेना खूब गहरा, फिर यथेष्ट तेरी मर्यादा से कर। जब यथेष्टता कहा तो हम लोग घबराए, क्या करें तेरी मर्यादा से कर। तो शरणागति ये कह देना है, ये बड़ा भरी की दंड है, जैसे तेरी मर्यादा से कर, तो मर्यादा से कर देते हमारा, आपके मैं क्यों पूछता हूँ, क्यों शरण होता हूँ। तो घबरा गए। तब भगवान कहते हैं सर्वगुह्यतम भूय श्रृणु मे परम वच, स्तोषी मे निर्मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम, शासन कर फिर करे पसाऊ नाथ प्रभुन कर ए स्वभाव। ये बड़े होते हैं वो शासन करते हैं, ताड़ना करते हैं और फिर कृपा करते हैं, स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, प्यार स्नेह करते हैं। तब स्नेह फिर कहते हैं कि देख सबसे गोपनीय बात मैं अब कहता हूं, सर्वगुह्यतम, ये सर्वगुह्यतम पद यहां आया पहले गीता में नहीं आया, सबसे अत्यंत गोपनीय बात कहता हूं, शुरू में परमम बचा, ये दसवां अध्याय में कहा शुरू में परमम बचा, भूये महाबाहो शुरू में परमम बचा, सर्वगुह्यतम भूय शुरू में परमम बचा, पर सर्वगुह्यतम पद नहीं आया, गुह्यतम आया है, गुह्यतर आया है, गुह्यात गुह्यतम आया है। ऐसी सबसे गोपनीय बात मैं कहता हूं शुरू में परम, इष्टोसि मे, मेरा इष्ट है, प्यारा मित्र है, तो प्यारा मित्र है, अनंत है, तेरे है सम भक्षम तेरी, इसकी बात कहता हूँ। तो मित्र था ही क्यों कहा पुरस्कार के लिए, कहते जैसी मर्जी हो जैसे कर, तो उसका असर करता है। तू मेरा प्यारा मित्र, मैं त्याग नहीं करता हूँ इसकी बात कहता हूँ। तो भगवान बहुत द्रवित होकर के प्यार के सेठ कह रहे हैं, ताड़ना करके पीछे कहते हैं, उसमें प्यार होता है, अपनापन होता है। वो अपनापन से कह रहे हैं, मन मना भव मत भक्तो मध्यादी मांग, मेरे में मन वाला हो जा, मेरा भक्त हो जा, मेरा पूजन कर और मेरे को ही नमस्कार कर, ऐसे मेरे होने से तेरी विजय होगी। फसी जाने प्रियो सी में तू मेरा प्यारा भक्त से मेरे की प्राप्ति हो जाएगी, कुछ भी कमी नहीं रहेगी। ऐसे कहकर फिर कहते सर्वधर्मान परिचय माम एकम शरणम ब्रजा, संपूर्ण धर्मों के आश्रय को छोड़ दे। अर्जुन ने क्या कहा है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ चेता, धर्म का निर्णय नहीं कर सकता कि अब देखो इधर तो छात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करना धर्म होता है और भीष्म और द्रोण आदि देखता हूँ तो युद्ध न करना ठीक होता है, तो मैं धर्म का निर्णय करने में असमर्थ हूँ, इस वास्ते आपसे पूछता हूँ। भगवान कहते मैं कहता हूँ सर्व धर्मान पर छोड़ धर्म का आश्रय, क्यों पंचायती कहता है, जब मैं कहता हूँ युद्ध कर तो धर्म का तेरे पर क्या ठेका गया, मैं कह रहा हूं मेरा प्रश्न बढ़ कर गया, धर्म बढ़ कर गया। धर्म वालों क्या होती है, नौमा जाएगा तय विद्या माम सोम पापूत पापा यज्ञ रिश्वा स्वर्ग से पुण्यमासा सुरेंद्र लोकम अस्मंद विद्यान देव देव भगवान तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीरे पुण्य मर्त लोकम विशंति एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्ना, तीन वेदों के धर्म के शरण करने वाले गतागतं काम कामाल बनते, धर्म का आश्रय लेना ये होती है, धर्म का आश्रय धर्म मनुप्रपन्ना, धर्म की प्रपन्न शरण है गतागतं काम कामाल बनते। अब मैं कह रहा हूं भगवान अर्जुन सुप हो गए माम एकम शरण नंबर अहं था सर्व पापी मोक्ष, ये पाप भीष्म को कहता सर्व पाप जन्म जन्मांतरों के पाप सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, तू चिंता क्या कर, मां सुधा शोक मत आरसी शोक मत। तो भाइयों बहनों भगवान के शरणों के शरण हो जाना है बढ़िया बात, सब पापों से मुक्त करूंगा और मत प्रसाद तरी सर्वदुर्गाणी मत प्रसाद तरी से सही संपूर्ण विघ्नों को बाधाओं को मेरी कृपा तर जाएगा और मत प्रसाद अब आप लोग शाश्वतम पद मव्यम शाश्वत अविनाशी पद की प्राप्ति हो जाएगी, विघ्नों का नाश और परमा तत्व की प्राप्ति ये सब कुछ हो जाए, मत प्रसादात मेरी कृपा से हो जाएगी, माप एकम शरणम बचा मेरी शरण हो जाए, केवल भगवान की शरण होना है। हे नाथ मैं आत्मा हूँ, संतों की बाणी माता के पति ब्रता रहे पति के पास के ढिग रहे दासा, जैसे पति ब्रता होती है वो अपने माँ बाप भाई भौजाई भतीजे कुटुम्बी जितने हैं उन सबको छोड़कर एक पति के हाथ में अपना पति हाथ पकड़ा देता है, वो फिर वही रहती है, रहती नहीं गोत भी उसका वही होता, जो पति का गोत है वही गोत होता है, पीहर में बालक हो जाए तो उस लड़की को नहीं लगता, अच्छे घराने के सज्जन पुरुष है अपने स्वस्थ तो हो गया तो कहते भाई ठाकुर जी की पूजा तू कर दे, इसका गोत दूसरा है अब इसको सूत्र नहीं लगता, उसके ससुराल में बालक हो जाए कि भाई तू पनीर में रसोई में हाथ मत लगाना गोत लग गया है, तो गोत बदल जैसा गोत, ऐसे भगवान के शरण होने पर गोत बदल जाए, कच्छते कथनते अच्युत गोत्री ना, भगवान के शरण होने वाले को अच्युत गोत्री कहते हैं, अच्युत गोत्र है उसका भगवान का है, वो अच्युत होता ही नहीं कभी, ऐसा गोत है पक्का, अब उत्साह के लिए जन्म लगे सर्व मन सदा के लिए घोष हो गया वही साहेब को घोष घोष होश है गुलाम को शरणागति घोष बदल जाता जैसे वो पति के पास रहती है ऐसे तो साहेब के ढीले रह जाता पति की मर्जी में अपनी मर्जी अपना कोई काम नहीं अपना कुछ कोई धर्म नहीं एक पति का ऐसे भगवान के चरणों के शरण हो जाए फिर किसी चिंता की जरूरत नहीं भगवान साहब कहते हैं मां सोचा तू शोक मत कर तू चिंता क्यों करता है मां एक कम शरण एक आस एक आस रो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम सातक तुलसीदास एक आस रो एक बल एक ही आस है एक ही पक्ष जैसे पपीहा होता है वो बदल के पानी को ही पीता ऐसे ही भगवान घनश्याम है घनश्याम भगवान घनश्याम वही घनश्याम सातक तुलसीदास एक भगवान का आशीर्वाद हे नाथ मैं आपका मीराबाई का स्वरूप है ये चाहे कोई भाई हो चाहे बहन हो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल तो कई आदमी कह सकते हैं पर दूसरा न कोई इस मत में जाते हैं दूसरों को अपना मान लेते धन को कुटुंब को विद्या को योग्यता को बुद्धि को बल को अपना मान लेते हैं पर मेरा भाई क्या कहते हैं मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई और मेरा कोई नहीं इसको आनंद कैसे मानसा मानसो यो अभ्यवसाय भक्ति योग से अनंत चेता सत्म अनन्यास्तंत्रियंतु वाम और कोई आश नहीं एक आश रो एक बल एक आश विश्वास उसका आश्रय है उसी का ही बल है उसी की आशा है उसी का ही विश्वास है एक तो ये सरल साधन है और सर्वोपरि साधन है हे नाथ मैं आपका अब उसका प्रबंध भगवान करो जो जाको शरणों लियो ताका ताकि राज उल्टे जल मछली चले बेहो जात गजराज छोटी सी मछली जल में रहने वाली जलहारा जोर से उसके सामने चल जाए उसके नहीं ऊपर से जल गिर रहा है पर धारा गिरे धारा गिरती हुई धारा में चल जाए ऊपर कितनी निरीक्षण बात है आप जाओ चोट लगेगी धारा की मैं इतना जोर से पानी गिर रहा है जल की चोट लग जाए ऐसे गिरते हुए पानी के सामने चल जाए चल जाते क्यों शरण ले लिया अब पानी के सिवाय शरण नहीं है बाहर वो नहीं रहती मछली जल में ही रहती जल का ही दास है जो जाको शरणों से हो ताके ताकि राज उल्टे जल मछली से बेहो जात गजराज कहा तो मछली का बल रहा गजराज का कहा बल है महाराज जोर से बाल उथल पुथल हो जाए गजराज पर मछली को ना बढ़ा सकता मछली से शरण ले लिया अब उसके संबंध से जीती जीती है नहीं तो मर जाए उसके बिना ऐसा आश्रय ले लिया जो जल ने खुली कर दी कैसे घूमो तुम्हारे वाल से खुली तो ऐसे भगवान के चरणों की शरण होने पर फिर सदा निश्चिंत निशंक निशोक निश्चिंत न शोक है न शंका है न चिंता है न भय है न उद्वेग है न कुछ नहीं है भगवान के आश्रय है मौज हो जाए मस्त रहता भगवान के चरणों के शरण होने पर कैसा ही क्यों न हो अभी चेत सी पाप है अभिचेत सी पापे भी सर्वे भी ज्ञान की बात अभी चेत सुदुराचार हो भजते माँ मनने बात अभी चेत सुदुराचार है दुराचार हो मैं भी दुराचारी सुदुराचारी सुष्ट दुराचारी सांगोपांग दुराचारी उपांग भी छूटे नहीं दुराचारी का कौन कुकर्म किए नहीं मैंने जो गए भूल सो लिए उधारे ऐसी खेप भरी रस पच के चकित भरे लख के बन जा रहे ऐसा पाप भरा हुआ भरा कौन कुकर्म ऐसा कौन सा पाप जो मैंने नहीं किया और जो गए भूल कोई भूल में रह गए तो उधार दे दिया उसकी निंदा करके उसकी तरफ वो भी पाप ले गया। दूसरों की निंदा करता है तो उसका पाप ही उसका आ जाता है। ये उधार लेना है, मुफ्त में दूसरों पाप लेना है, जो गए ये उधार ही। ऐसी खेप भरी जैसे कसी चकित भरे लगते भर जा रहे चकित हो गया, इतना माल कहाँ से ढोएगा तुम्हारा के? ऐसे पाप है, तो ऐसे पाप सब से सुधरा जा रहा भजते भाव अनन्य भाग। अनन्य भाग का अर्थ ये नहीं कि तैल धारावत भगवान का ही चिंतन करे, ये नहीं है। न अन्यम भजती, जैसे पतिव्रता हरदम पति का ध्यान थोड़ी करती है, अपने भीतर से भाव बदल गया, मैं तो बस इसी को हूँ, वो ससुराल की हो गई, जहाँ पैदा हुई पली रही, प्यार पाया माँ बाप दादा दादी कुटुम्बी भाई भुजाई सबका प्यार पाया स्नेह पाया पली सब कुछ, परंतु भूल जाती ससुराल गई और वो अपना घर हो वो घर भूल गई, इतने तक भूल जाती क्या बताओ, आश्चर्य आता है। दादी हो गई, परदादी हो गई, पोते हो गए, पर पोते हो गए, कुटुंब हो गया, अब बूढ़ी दादी, एक पोते का ब्याह किया, वो लड़की अच्छी नहीं आई, ठीक नहीं, तो वो दादी भी कहती है मारो घर खोयो पराई जाई छोकरी ने आकर मेरा घर बिगाड़ दिया। मानो ये दादी जी यही जन्मी है क्यों, ये पराई जाई छोकरी आई, मैं जी आप भी पराई जाई हो कि यहाँ जन्मी हो, याद ही नहीं है, ये पराई जाई छोकरी आ गई मरेंगे पराई जाई, इतना दिल मैं तो यहाँ भी हूँ, यहाँ माँ हूँ, मैं दादी हूँ, मैं परदादी हूँ, ये कुटुंब सब मेरा है, मैं तो खास बूढ़ी मजा माता जी हूँ, मैं तो भूल जाती हूँ। ऐसे सज्जनों भगवान के शरण होने वाला अपनी जाति ज्ञाति वर्ण आश्रम को भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं तो भगवान का हूँ भाई, पहले था किसी का चरण था, तो अनेक जन्मों में अनेक तरह की बात हुई है, तो अनेक जन्मों में अनेक जन्म के थे, वो जाति है, वो ज्ञाति है, वो नाम है, वो गोत्र है, वो संबंध है क्या भाई, जब वो नहीं है तो बस उस भगवान के शरणों के शरण हो गया, अब हमारा तो जन्म बदल गया, हमारा तो बात बात बदल गई। एक हमने कथा सुनी, एक था चोर, उसने राजा के यहां चोरी करी, खूब गहने रत्नों के भरे हुए से गहने चोरा लिए, चोर कर भागा तो पता लगते ही पीछे उनके खोजने के लिए चले, उनको अपने मारवाड़े में बाहर से या बाहर अरे पीछे खोज करने वाले ये खोजी होते हैं, बड़े चतुर होते हैं, पहचान ले दशरथ पहचानते अंगूठा पहचानते ऐसे ही खोज को पहचानने से, वो चढ़े पीछे तो इस रस्ते गया, अब उसी दिशा में जाते हैं, अगर जाकर के और कोस तो कोस फिर देखते हैं किधर गया इधर गया, फिर चलते फिर खोज करते, ऐसे खोज करते करते चले गए। वो क्या करता है कि वहां से चला तो दोपहर का समय हो गया, प्यास लग गई, एक गांव में पहुंचा, चातुर्मास में एक कथा होती है, ऐसे एक जगह कथा हो रही थी, प्यास लगी है तो कथा होती है, मनो को देखा तो वहां चला गया, वहां जाकर पिया जल पिया बैठा तो कथा हो रही थी, वहां सुना कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, रामायण में आए कि बस मेरे शरण हो जाए, अब हम सर्वभूते ददामि तं प्रसन्नम्। तवास्मि यास्ते कहते हे नाथ मैं आपका हूं, ऐसा कोई कह देता है तो सब पापों से मैं भय से मुक्त कर देता हूं, उसकी चिंता की है नहीं, अभयम सर्वभूते वेदांत व्रतम मेरा नियम है। विभीषण के प्रसंग में बात आती रामायण, तो उसने देखा ये बात बड़ी थी। और शकरदेव एक बार शकरदेव प्रपन्नाया तो वास में हे नाथ मैं आपको हूं एक दफे कहते, तो संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूँ, जमराज का भी भय उनको नहीं रहता, मैं निर्भय कर देता हूँ, ये मेरा नियम है। तो उसने कहा ये बात तो बहुत ठीक जच गई मत, उसे हुए हे नाथ मैं आपका हूँ, मैं आपके स्वयं हूँ अब समय चिंता नहीं, अपना उद्धार भी वही करेंगे न करेंगे जो कुछ अपने पंचायत में सब हो गए। वे बाहर आने वाले देखे तो देखे तो इस गांव में प्रवेश किया है ये, बाहर चारों तरफ देखा कि तो बाहर नहीं निकला है, सब देख लिया बाहर की खोज नहीं गए, इस गांव में है वो, अब गांव में तो कहाँ ढूंढे, तो वे भी चले गए वहां, सत्संग हो रहा था बहुत समुदाय था, तो इसको कहाँ खोजे कैसे खोजे, है इस गांव में, गांव में प्रवेश हुआ है निकला है नहीं। तो वे सत्संग करके निकलने लगे तो वो खुद ही खड़ा रह गया, खड़ा रह चलते चलते वो जहां उसको खोज आया पट पकड़ लिया, कहते क्यों क्यों कहा कि चोरी की है तुमने, अच्छा ले गए तेरा चोरी की, ना मैंने चोरी नहीं की, कहते चोरी हूं स्वीकार थोड़ा ही करता, पकड़ो उसको ले जाए, ले गए राजा के पास, हमने हाजिर कर दिया साहब ये चोर है, ये तुमने चोरी की, झांसा मैं चोरी की ही नहीं, मैंने जन्म भर में चोरी नहीं की, मैं चोर हुई नहीं, मैंने कैसे चोरी की, के पक्की बात की पक्की सच्ची बात, जन्म भर में मैंने चोरी नहीं की, किसी की नहीं की, कभी नहीं की चोरी, बड़ा जोर से बोल दो। राजा ने देखा इतना आदमी धड़क बोलता है कैसे ले भाई तुम पकड़ करके, तो करो किसी परीक्षा करो, लोहा तपा करके उनके हाथ में दो, तो ढाई पत्ते पीपल के रख कर ऊपर कच्चा धागा बांध दिया हाथों में, उस तपा लाल सुरख लोहा करके हाथों में दे दिया, पकड़ो देखिए ले लिया फेंक दिया, धागा नहीं जला। राजन किया करो तुम निर्दोष हो, ये तुम परीक्षा कर ली, नहीं तो निर्दोष को तुम दंड दिला देते, अब तुम्हारे को दंड देंगे, ऐसे निर्दोष आदमी पकड़ रहा है दम करा, तो बोला अंधाता ये झूठे नहीं है ये सच्चे है, मैंने चोरी की नहीं कि मैंने तो जन्म भर नहीं की, ये सच्चे झूठे नहीं है ये सच्चे है। राजा बड़े विचार में सच्चे कैसे है कि महाराज मैंने चोरी की है, परंतु ये इस जन्म की बात नहीं है, ये पूर्व जन्म की बात, जब से मैं भगवान के चरणों के शरण हुआ हूं तब से मैंने चोरी नहीं की, बिल्कुल वही मेरा जन्म है, इतना दिन मेरा मैं जन्म नहीं मानता, वो एक दुष्ट जन्म था, अब मेरा जन्म हो गया है, मैंने चोरी नहीं की। तो तुम बचाने के लिए कहते हो नहीं साहब आपका सब माल बरामद करा दू, जाओ देखो क्या है, और जाकर देखा जंगल में खाड़ा खोद करके बो दिया, ऊपर मिट्टी दी मिट्टी को हाथ लगा दिया से यहाँ खोदो, सब माल मिल गया। राजा को बड़ा आश्चर्य आया कि जन्म पर मैं नहीं ये चोरी की पहले कि महाराज मैं जन्म तब से ही मानता हे नाथ आपके शरण हूँ, अब चोरी की नहीं करूंगा नहीं कभी भी, अब मैं भगवान के शरण हो गया, मैं चोर नहीं हूं, मैं साधारण आदमी हूं, मैं तो भगवान का हूं, अब जैसा हूं पापी हूं तो भगवान का, पुण्यात्मा हूं तो भगवान का, अच्छा हूं तो भगवान का, मंदा हूं तो भगवान का, सियार भगवान की मेरा कोई नहीं, मैं और किसी का नहीं भगवान के हुआ, तुम्हारा ये भगवान के शरण होते ही जन्म और हो जाता है, ऐसी सरल बात इतनी सुगम इतनी जल्दी सिद्ध होने वाली, परंतु भाव होना चाहिए जैसे स्त्री होती है को बार बार चढ़ता ना तिया का सो तेल है, वो लड़की तेल चढ़ती एक बार उम्र बस एक बार हो गया सो हो गया, अब और किसी को मैं नहीं हूँ, मैं तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, ये दूसरा न कोई, ये दृढ़ता से पकड़ लो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, नारायण 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 नारायण।